ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 12 श्लोक 8 से चालू करें, छोटा छोटा श्लोक है। लोका सपाला जस्य मे सुसंति दिवसा वसे द्विजा इवसिचा बद्धा स्वकाल यह कारणम ओज सहो बलम फलम प्राणम अमृतम ऋतुमेव च तमज्ञाय जनो हेतु आत्मानं मन्यते जरम यथा दारुमयी नारी यथा पत्रमयो मृग एवं भूतानि भगवान इस तंत्राणि विद्धिभो। जितराशु जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। आज 12वें अध्याय की कथा है छिनक बाहु। एक बाह कट गई है धृतराष्ट्र की, भगवान इंद्र ने मार दिया था, बाह काट दिया था, बाई भुजा से भी परिघ उठाए, मुसल उठाए और मुसल उठा करके इंद्र के पास पहुंच करके इंद्र के वाहन ऐरावत को भी मारे और इंद्र के ठुड़ी पर प्रहार कर दिए। इससे इंद्र का जी झंझना गया, हाथ से वज्र गिर गया। यह बड़ी विचित्र घटना हुई, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। इस पर वृत्रासुर के इस कर्म को देखकर सभी ने प्रशंसा किया, देवताओं ने भी बहुत प्रशंसा किया, सिद्धचारण और दैत्य लोग तो करते ही थे, सब जय जयकार करने लगे। धन्य है वीर। एक भुजा कट गई थी, फिर भी एक भुजा से, बाएं भुजा से उन्होंने इंद्र पर प्रहार कर दिया, इंद्र के हाथी पर, और इसके कारण इंद्र का वज्र गिर पड़ा। ये बहुत अद्भुत बात है, इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अति अद्भुतम, वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतम, अति महा अद्भुतम, ये कर्म था। इस तरह से बाई भुजा से मार देना और इंद्र का वज्र गिर गया, ये वृत्रासुर का अद्भुत कर्म था जिसकी प्रशंसा देवताओं ने भी किया, जबकि वे सब विपक्ष में थे, देवताओं ने जय जयकार किया, बहुत प्रशंसा किया, और सिद्ध चारण और दैत्यों ने भी। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जिता। अब इसके बाद इंद्रदेव विलज्जित हो गए, विशेष लज्जित हो गए, जब उनका हथियार अस्त्र गिर पड़ा हाथ से, बहुत विलज्जित हुए। और वह वज्र गिरा था बिल्कुल वृत्रासुर के सामने, तो लज्जा से इंद्र देवता फिर उस वज्र को उठाए नहीं, तो उनको हरि संबोधन करके वृत्रासु कहते हैं हे हरे आत वज्र, आप अपना वज्र ले लीजिए, जही स्वशत्रु, आप अपने शत्रु को मारिए अर्थात मुझे मारिए, नहीं विषाद काल, ये विषाद का समय नहीं है, ये हतोत्साहित होने का समय नहीं है। क्यों नहीं हतोत्साहित हो? मेरा अस्त्र गिर गया, आपने मार दिया हम पर और हमारे हाथी पर, तो उत्साह तो कम होगा ही। इस पर वृत्तासुर कहते हैं, नहीं उत्साह मत कम कीजिए। उसी पर श्लोक बोलते हैं, जुजुत सताम कुत्तचिद आतताई ना, जय जय सदय कत नय परात्मना। इस भौतिक जगत में सभी जीव, सभी मनुष्य पराधीन है, सभी ईश्वर के अधीन है। युद्ध करने वाले योद्धाओं के हाथ में अस्त्र होता है, अस्त्र लेकर के प्रहार करते हैं, इस अवस्था को आतताई अवस्था कहते हैं। युद्ध के लिए तैयार हैं और अस्त्र ले लिया है अपना अपना, तो कोई जरूरी नहीं है। वृत्रासुर कहते हैं कि सब विजयी ही होंगे। युद्ध जुजुत सताम कुत्रचित आतताई नाम जय सदय कत, कुत्रचित कभी कभी किसी की विजय हो जाती है, सदा विजय नहीं होती है, एक ही व्यक्ति की सदा विजय होती है, वो है सनातन पुरुष, सर्वज्ञ पुरुष श्री भगवान। भगवान विष्णु को छोड़ करके और कोई ऐसा नहीं है जो सब समय विजयी हो। आपके हाथ से वज्र गिर पड़ा इसलिए आप निराश मत होइए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जीतूंगा, ये तो लौकिक बात बोल रहे हैं। वास्तविक बात यह है कि आप भगवान के साथ हैं, आपकी सहायता भगवान कर रहे हैं, इसलिए आप जीतेंगे, निश्चित है, आपकी विजय निश्चित है। तो अस्त्र शस्त्र लेने से क्या हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति जो अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार है तो सब समय विजयी नहीं हो सकता, कभी कभी विजय प्राप्त होती है। जब भगवान की इच्छा होती है, उनकी कृपा होती है, तब विजय होती है। हथियार उठाने से, युद्ध के लिए उत्सुक रहने से कोई लाभ नहीं होता है। एक ही व्यक्ति को सब समय विजय होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ ईश्वर इस विश्व का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसको ध्वस्त कर देते हैं, जो सृष्टि पालन और प्रलय के स्वामी हैं, वे भगवान विष्णु ही सर्वत्र विजयी होते हैं और सब समय, और उनके अधीन रहने वाले जीव कभी कभी उनकी इच्छा से जीतते हैं। श्री भगवान ही सर्वज्ञ हैं और आद्यम, वही इस विश्व के आदि पुरुष हैं, सनातनम और सनातन है, तो सब समय से हैं, पहले से ही अनादिकाल से और सब समय रहेंगे। कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि श्री भगवान नहीं रहेंगे, रहेंगे हमेशा। इसीलिए सनातन है, सर्वज्ञ माध्यम पुरुषम सनातनम। तो ऐसे श्री कृष्ण केवल सब समय विजयी होते हैं। मैं आपका वज्र गिरा दिया तो ऐसा मत समझिए कि मैं विजयी बनूंगा। विजय उसी की होती है जिसकी भगवान सहायता करते हैं। तो आपके पक्ष में श्री भगवान हैं, निराश मत होइए, उठाइए वज्र, आत वज्र उठाइए, वज्र और वज्र से अपने शत्रु का वध कीजिए। लोका सपाला जसे में सुसंति विवसा बसे, द्विजा योशिचा बद्धा स्वकाल यह कारण। जैसे जाल में फंसे हुए द्विज पक्षी, पक्षी को द्विज कहते हैं क्योंकि दो बार जन्म लेते हैं, एक बार अंडा में और दूसरी बार अंडा को फोड़ करके प्रकट होते हैं, दो बार जन्म होता है। पक्षी जैसे जाल में फंसे रहते हैं, जाल में फंसा लेता है कोई तो वे विवश रहते हैं, बाहर उड़ नहीं सकते, जा नहीं सकते। जैसे जाल में पड़े हुए पक्षी विवश रहते हैं, वैसे ही सारे प्राणी, देवता दैत्य सभी और मनुष्य सभी जीव जिसके बस में हैं, सभी पाल, सभी लोक, सब लोग और सपाला, सपाला मतलब जो जहां के लीडर हैं, सब जगह के वे सब और समस्त जनता भगवान के अधीन रह करके जी रहे हैं, स्वसंति सांस लेते हैं। जस्य वसे, जिसके वश में सारा जगत भगवान के अधीन है, कोई ईश्वर को माने या न माने लेकिन सब लोग वश में हैं। ऐसे श्री भगवान को ही उनकी इच्छा को काल कहा जाता है। इस जगत में जो भी हो रहा है इसका कारण काल है, स काल यह कारण, काल ही कारण है। काल भगवान की इच्छा शक्ति को कहते हैं। तो काल जैसा कराता है वैसे करना होता है। कोई ये सोचे कि हमारे इंद्रिय में बल है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, हाथ से काम करने की शक्ति है, इसको ओज कहते हैं। तो ये ओज जो भी है किसी भी प्राणी में चलने की, बोलने की, सुनने की ओजा सह, और सह का अर्थ है मनोबल। किसी भी व्यक्ति में मनोबल है वह इसका कारण काल ही है। काल इंद्रिय शक्ति देता है, शरीर का बल देता है बलम और प्राणम, सांस लेने की शक्ति। काल के कारण हम लोग सांस ले रहे हैं। अगर काल नहीं चाहेगा तो सांस नहीं ले सकते और किसी की मृत्यु, किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है, इसमें कारण काल है। लोग कहते हैं ना उसका काल आ गया था, तो काल ही कारण है। अब तो काल बहुत आ रहा है, वो काल ही है जो मोबाइल फोन पर सुनते हैं, तो काल ही है, बचना चाहिए। काल कारण है, अगर कोई जीत रहा है तो काल के कारण जीता है, हार रहा है तो काल हरा दिया, यह कारण, और कुछ कारण नहीं है। यदि शरीर में स्फूर्ति है तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मैं बहुत व्यायाम किया था, बहुत खाया हूं पौष्टिक भोजन, इसीलिए मैं फुर्तीला हूं, मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं, मुझमें हाथ से काम करने की शक्ति है, आंख से देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, ये सब कारण मैं हूं, व्यक्ति यही सोचता है। ये शरीर अच्छा है बुरा है, हमारे शरीर में शक्ति है, इसको तम अज्ञाय जना, इसको न जान करके, काल को न जान करके व्यक्ति जडम आत्मानम मन लेते, जड़ शरीर को कारण मान लेता है, यह मूर्खता है। धृतराष्ट्र कहते हैं यदि कोई ऐसा मानता है कि मेरी बुद्धि से मेरे बल से काम हो गया तो ये ना समझी है, भगवान को समझना चाहिए। सबके हृदय में सबके शरीर में श्री कृष्ण हैं और वही इंद्रियों में बल दे रहे हैं, वही मन में बल दे रहे हैं, मानसिक बल दे रहे हैं और शारीरिक बल भी वही दे रहे हैं। यदि भगवान चाहते हैं तभी हम पलक भी गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं, पलक उठाने की भी शक्ति नहीं है जीव में। सभी शरीरों में रह करके अपने अंश जीवात्मा के रूप में श्री भगवान शक्ति दे रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आता है कि आंख की पलक जो गिरती है गिर करके ही रह जाती है, उठती नहीं है, पलक उठाने की भी शक्ति नहीं रहती है। हाय मम जीवन रहाई जावे शेष पड़ी जावे पल नयन अंतिम निमेश। एक दिन ऐसा समय आएगा, काल आएगा कि अंतिम बार पलक गिरेगी, आंख बंद हो जाएगी, फिर नहीं खुलेगी। बंगला में पद है कहा गया है और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, हाय मम जीवन हई जावे शेष पड़ी जावे नयन अंतिम निमेश। सबकी ये दशा होती है, एक दिन आंखों की पलक गिरेगी, बस गिर करके रह जाएगी। तो ये पलक उठाने और गिराने की शक्ति काल में है, भगवान में है। वही जन्म दे रहे हैं, वही जिलाते हैं, वही मारते हैं। अमृतम मृत्यु में वचन, वही जीवन देते हैं और मृत्यु के भी कारण वही। जथा दारुमयी नारी, जैसे लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी हुई कठपुतली है, दारूमयी, और कठपुतली को जो तंत्री है नचाता है, कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। अगर कोई डॉल देखा है, गुड़िया देखा है, तो कभी कभी वो दारू की नारी कठपुतली नाचती है, गाती है, बहुत तरह से अंग संचालन करती है, लेकिन उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। या यंत्रमयो मृगा, पत्रमयो मृगा, यंत्र से बना हुआ, पत्ता से, घास से बना हुआ पशु है। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा मशीन से चलने वाली बहुत से दृश्य हैं। जैसे मैंने देखा बनारस में श्री हनुमान जी रामायण पाठ कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अब जीवन लाइन कट जाती है, बस हनुमान जी का मुख खुला रह जाता है। मीराबाई डांस करते हुए दिखाई दी, और लाइन करते ही जो जहां जैसे है बस शांत हो गए। तो इस तरह से जैसे यंत्र में मृग है, पत्ता या प्लास्टिक से, कागज से बना हुआ पशु, लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिजली कट गई तो फिर भी कुछ देर चलेगा, नहीं, उसमें अपनी चेतना नहीं है। ये पपेट शो देखते हैं, सब सूत्रधार तंत्री कहते हैं, सूत्र को जो पकड़ा है वो चलाता है, दिखाता है। तो जैसे कठपुतली जो काठ की नारी है, और पत्ता और घास से बना हुआ मृग है, उसमें अपनी चेतना नहीं है, वैसे ही ये हम लोगों का जो शरीर है, ये पांच चीज से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, पर इसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। इसमें जो चेतना है वो भगवान की चेतना है, भगवान चला रहे हैं, तभी हम देखते हैं, खाते हैं, सुनते हैं, या काम करते हैं, चलते हैं। चलने की ही शक्ति हम में नहीं है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। तो वृत्रासुर शिक्षा दे रहे हैं देवराज इंद्र को कि आप निराश मत होइए, आप उत्साह रखिए, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और ऐसे श्री भगवान आपके पक्ष में है, अतः आपकी विजय निश्चित है, मेरी हार निश्चित है, लेकिन मैं हार करके भी आपसे ज्यादा जीतूंगा। भगवान इंद्र ने कहा कि मेरा अस्त्र गिर गया है, आपने मुझ पर प्रहार किया बाएं हाथ से, तो मेरे जीतने की संभावना कहां है? मैं तो हारा हूं, मेरी हार होगी, अतः मुझे युद्ध के लिए उत्साहित मत कीजिए। बार बार मुझे क्यों कहते हैं कि वज्र उठाओ, वज्र उठाओ? मैं अपनी हार मान चुका हूं। हमसे मत कहिए कि युद्ध करो। तब इंद्र को उत्साहित करते हुए बोलते हैं, आयुषी कीर्तिरैश्वर्य, इस संसार में जैसे कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं मरूं, पर फिर भी आयु पूरी हो जाने पर लिखा हुआ है कितना दिन आत्मा इस देह में रहेगा, वो पीरियड पूरी हो जाने पर वो शरीर छोड़ना ही पड़ता है। यदि कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहे फिर भी छोड़ना पड़ता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारी बदनामी हो, पर बदनामी आ ही जाती है इच्छा के विरुद्ध भी, यथा निच्छो विपर्यया, जैसे अनिच्छु व्यक्ति को इच्छा नहीं होते भी विपर्यय बदनामी अपजस ये सब हो जाता है, नहीं चाहता है मृत्यु लेकिन मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सब बातें ईश्वर के अधीन है। आप ऐसा मत मानिए कि आपकी पराजय है, ईश्वर की इच्छा से ही कोई विजयी होता है, किसी की पराजय होती है, किसी को जस मिलता है, किसी को अपजस मिलता है, किसी को जीवन मिलता है, किसी की मृत्यु होती है। ये संसार में जन्मना मरना, बहुत दिन तक जीवित रहना, ये किसी के अधिकार में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत बलवान है और वो सोचे कि मैं बहुत दिन जी जाऊं तो अपनी इच्छा से जी जाएगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर की इच्छा से, कृपा से कोई जीवित रहता है, और जब उनकी इच्छा नहीं होती है तब सब सुविधा होते हुए भी मरना पड़ता है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, कभी कभी देखा जाता है बहुत धनी व्यक्ति का लड़का बहुत सुंदर अस्पताल में भर्ती होकर के भी बड़े बड़े डॉक्टरों के द्वारा रक्षित होकर के भी मर जाता है। बड़े बड़े डॉक्टर और बड़ा बड़ा अस्पताल क्या करेगा? तो किसी के जीवन की रक्षा श्री भगवान करते हैं, वही जीवन दिए हैं और जीवन की रक्षा भी वही करते हैं। कितना दिन कितना वर्ष उसको इस देह में रहना है वही व्यवस्था करते हैं। कोई सरकार या कोई समाज परिवार निश्चित नहीं कर सकता कि यह व्यक्ति इतना दिन इस शरीर में रहेगा। सब कुछ ईश्वर के अधीन है। इसलिए हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए, सम होना चाहिए। समस्यात सुख दुखाभ्याम, सुख में चाहे दुख में सम रहना चाहिए, मां बैलेंस खोना नहीं चाहिए। सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, कर्म से कुछ नहीं होगा। कोई व्यक्ति समझता है कि मैं अच्छा कर्म किया हूं, मेरा फल अच्छा ही होगा और अच्छा कर रहा हूं, तो अच्छा करके भी वो जीवन की अवधि बढ़ा नहीं सकता, अपजस से बच नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीज आयु आयु मतलब उम्र बढ़ना या घटना सब ईश्वर के अधीन है। धन होना न होना सब ईश्वर के अधीन है। आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्य ऐश्वर्य कितना दिन कौन व्यक्ति ऐश्वर्य में रहेगा, बहुत बड़े पद पर रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो सब कुछ ईश्वर के अधीन है, इसीलिए सम रहना चाहिए। सब समय श्री भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। आप इतने से निराश हो गए, ठीक नहीं। देखिए मेरी तो बांह कट गई है। जो अस्त्र चलाने का साधन है उस भुजा को आपने काट दिया। मेरी बांह कटी है, मेरा अस्त्र कटा है, फिर भी मैं प्रयास में हूं, यथाशक्ति आपका प्राण लेने की चेष्टा कर रहा हूं। घट मानम यथाशक्ति तव प्राण जिहिर से, आपके प्राण को हरने की मैं चेष्टा कर रहा हूं। आप मुझे देखिए, आप निराश हो गए केवल वज्र आयुध गिरने से, और मैं भुजा कटने से भी निराश नहीं हूं। भुजा कटी है, अस्त्र कट गया है, फिर भी आपका प्राण लेने की चेष्टा कर रहा हूं। आप मेरे तरफ देखिए, पश्च में निर्जितम शक्र, हे शक्र, हे सौ असमेध जग करने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, आप मुझको देखिए। इस विषय में मैं ही आपका गुरु हूं। कैसे सम रहना चाहिए, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, इस विषय में मैं आपका गुरु हूं। इतनी बड़ी हानि हो चुकी है, इतने बड़े संकट में हूं, फिर भी मैं प्रसन्न हूं। पश में निर्जितम शक, हे देवराज, मैं जीत लिया गया हूं, फिर भी मैं प्रसन्न हूं, और यथाशक्ति इस युद्ध क्षेत्र में आपका प्राण लेने पर पड़ा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, मैं निराश नहीं हो गया। वृत्तासुर ये भी कह रहे हैं कि निश्चित है कि आपकी जीत होगी, क्योंकि भगवान आपके पक्ष में है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। जितनी शक्ति है उतना आपको मारने की चेष्टा कर रहा हूं। फिर कहते हैं हे सुरेंद्र, हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, यह युद्ध क्या है? एक जुआ है। जुआ में जैसे पता नहीं रहता है कौन व्यक्ति हारेगा कौन जीतेगा, उसी तरह से युद्ध में कुछ पता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अत्र न ज्ञायते अमुष्य जयो अमुष्य पराजय। युद्ध चालू होने से पहले सबको, दोनों पक्ष को यही आशा रहती है कि मैं जीतूंगा जीतूंगा। जैसे आजकल के वोट में होता है, एक पद के लिए दस दस बीस बीस आदमी खड़े होते हैं, परंतु कोई एक ही जीतेगा, पर खड़ा होने से पहले पता नहीं चलता है कौन जीतेगा, निश्चित नहीं रहता है। अतः इस युद्ध में कुछ पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये लौकिक दृष्टि से बोल रहे हैं, लोक की दृष्टि है, इसको लौकिक दृष्टि कहते हैं। लेकिन वास्तविक दृष्टि वृत्ताचु की है कि भगवान हरि इनके पक्ष में है, ये तो जीतेंगे ही। तो जुआ के रूप में युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं प्राण ग्लहोयम, ग्लह ग्रहणीय चीज, जो जीतेगा, जीतने वाले को जो चीज मिलता है उसको पण कहते हैं, दाव। तो कौन जीतेगा कुछ पता नहीं होता है, इसलिए अपना काम करना चाहिए। आप अपना अस्त्र उठाइए, जहां तक आपकी शक्ति है आप अपने शत्रु को मारिए, काम कीजिए, हिम्मत न हारिए, विसारिए न हारिना, आप हिम्मत मत हारिए। वृत्रासुर की यह महान बात सुन करके भगवान इंद्र बहुत प्रशंसा किए, बहुत प्रसन्न हुए और वज्र ले लिए, गृहीत वज्र। वज्र लेकर के हंसने लगे, धन्यवाद भी, अहो दानव सिद्धोसी, आप दानव वंश में जन्म लेकर के भी सिद्ध हैं, महान भक्त हैं, ये ऐसी मति आपकी है। वो दानव सिद्ध सी जस ते मतिरी दृषि भक्त सर्वात्मात्मान सुहृदम जगदीश्वरम, आपने सब प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा की है, जो सभी जीवों के सुहृद हैं, ईश्वर हैं, ऐसे श्री भगवान की आपने सेवा की है, धन्यवाद आपको। आप भगवान की दुर्जय माया को जीत लिए, भगवान तारसिन मायामयी वैष्णव जनमोहिनी, भगवान कि माया को आपने जीत लिया है, इसीलिए आपका ये स्वभाव है, आप दैत्य होकर भी महापुरुष भाव को प्राप्त हैं, वैष्णव हो गए हैं। जब विहाय श्रम भाव महापुरुषताम गत, आप असुर होकर भी महापुरुष बन गए हैं, तो भगवान के परम भक्त बन गए हैं। इसके बाद वे कहते हैं खल विदम महदाश्चर्यम। ये बहुत आश्चर्य की बात है, आप ऐसे स्वभाव से दानव हैं, असुर हैं। असुर लोग प्रायः भगवान के विरोधी होते हैं, कोई एक दो असुर ऐसे हैं जो परम भक्त हो गए, जैसे प्रह्लाद महाराज। तो प्रह्लाद महाराज का तो पता है कि उनको नारद जी का संग मिल गया, नारद जी के संग से वैष्णव हो गए, लेकिन आपका तो कुछ पता नहीं चलता है। असुर होते हुए भी आप महान वैष्णव हैं, प्रह्लाद महाराज के जैसे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात, खल विदम महदाश्चर्यम, ये महत आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है, आप इतने बड़े वैष्णव कैसे हो गए। देवराज इंद्र युद्ध में ऐसी दशा देख करके बोल रहे हैं, इस तरह से युद्ध में भुजा कटी है, असुर सेना भाग गई है, फिर भी भगवान में मति लगी हुई है, भगवान की भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। सम है, संसार से वैराग्य है, स्वर्ग की कामना नहीं है। उन्होंने सुना न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न सुदशाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर होवा समंज सत्ता विरह कांच। हे कृष्ण, आपको छोड़ करके मैं ध्रुव पद नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्मा के लोक में नहीं जाना चाहता, मैं पृथ्वी का एक छत्र राजा नहीं बनना चाहता, और न रसातल की संपत्ति मुझे चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा चाहिए। युद्ध में ऐसा उद्गार है, जहां देवराज इंद्र थोड़ा सा पराभव से संभावना से हतोत्साहित हो गया है, और उसी युद्ध में वृत्रासुर अचल मति रखे हैं कृष्ण में। भगवान ने गीता में एक श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति को ही परम लाभ मानता है, और भक्ति करते हुए यदि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आता है तो उससे वो विचलित नहीं होता, गुरुणापि दुखिना न विचार लेते, बहुत बड़े दुख से भी घबराता नहीं, बहुत बड़ी डिफिकल्टी में पड़ करके भी घबराता नहीं। तो आप ऐसे महापुरुष हैं, इतनी बड़ी विपत्ति में है, संकट में है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हैं, भगवान में आपकी भक्ति है। फिर इंद्र देवता प्रशंसा करते हैं कि जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में भक्ति है, वासुदेव में भक्ति है, तो वह व्यक्ति अमृत के सागर में विहार कर रहा है, फिर छोटे छोटे गड्ढे में एकत्रित जल में उसकी कैसे रुचि होगी। ये जो संसार का भोग है स्वर्ग लोक का, ये सब छोटे छोटे गड्ढे में अशुद्ध जल के समान है। सबसे बड़ा सुख है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने पर वे तो मुक्ति तक दे देते हैं, अपने धाम में रख लेते हैं, लेकिन जो भक्ति करता है वो तो मोक्ष को भी तुच्छ समझने लगता है। अन्य सुखों की तो बात ही क्या है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्। एक श्लोक में भागवत में कहा गया है, मैं थोड़े काल के लिए भी साधु संघ में जो सुख मिलता है उस सुख के साथ स्वर्ग की तुलना नहीं करता। तुलना नहीं करता हूं। एक तरफ स्वर्ग का सुख रखा जाए और मोक्ष का सुख, तो मोक्ष का सुख तो उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो तो गड्ढे में एकत्रित हुआ एक दो किलो मूत्र जैसा है, और भक्ति अमृत का समुद्र है। तो उसने जो विहार कर रहा है वो मोक्ष क्यों चाहेगा, वो स्वर्ग क्यों चाहेगा। मैं तुलना नहीं करता। तुल्यामा लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम्। स्वर्ग में अपार सुख है, लेकिन भक्ति सुख के आगे वो किसी काम का नहीं। ऐसे सुख है वो, लेकिन उसके लिए जो भक्ति नहीं करता है। जब भक्ति में लगा है, भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान को देखने में, उसको स्वर्ग की क्या जरूरत है। ये देवराज इंद्र स्वयं प्रशंसा करते हुए कहते हैं, भगवान निःश्रेयस के ईश्वर हैं, मोक्ष के दाता हैं। और वही प्रभु जो सबके स्वामी हैं, सब वस्तुओं के स्वामी, सभी लोकों के स्वामी, वही भक्ति करने वाले को अपने धाम में रख लेते हैं, अपनी सेवा में। तो सबसे बड़ा सुख यही है ना। तो भगवान की भक्ति में रहने वाला व्यक्ति स्वर्ग की कोई अपेक्षा नहीं करता है। वृत्रासुर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप जो ऐसे हैं, आपकी भगवान कृष्ण में भक्ति है, इसीलिए आप स्वर्ग आदि को तुच्छ समझते हैं, और कोई आपको इच्छा नहीं है कि मैं युद्ध में जीत जाऊं, जीत करके स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लूं। धन्य है दानव वंश में जन्म लेकर के भी आपकी ऐसी मति है। हो दानव सिद्ध सी जस ते मतिरिद्र सी। आप सिद्ध हैं। सिद्ध का अर्थ होता है जो कृतकृत्य है, जो अपने जीवन में वास्तविक कर्तव्य को कर चुका। वास्तविक कर्तव्य है श्री भगवान की सेवा। तो आपने सब प्रकार से सर्वात्मना भगवान की सेवा की है। कैसे भगवान हैं सुहृदम, जो सभी जीवों के मित्र हैं, जगदीश्वरम, और सबके ईश्वर हैं। कंट्रोलर हैं, ऐसे प्रभु की आपने सर्वात्मना सेवा की है, धन्य है, मैं धन्य हूं कि आपका दर्शन हुआ। और उससे भी बढ़कर की यह बात है कि युद्ध में आपका दर्शन हुआ। इस तरह से स्वर्ग का राजा एक दैत्य की प्रशंसा कर रहा है कि आपकी मति ऐसी है, इस युद्ध में घोर संग्राम में भी मति घबरा नहीं रही है, भाग नहीं रही, कृष्ण में लगी है। जस ते मति ईदृशी, जस ते मति ईदृशी, ऐसी मति मैं डायरेक्ट अपने आंख से देख रहा हूं। हमको चिंता हो रही है कि मेरा स्वर्ग न चला जाए, और आपको चिंता है भगवान के सेवा की प्राप्ति की। आप में और हम में बहुत अंतर है। इस प्रकार से देवराज स्वर्ग के राजा दैत्य की प्रशंसा कर रहे हैं उनकी भक्ति के कारण। इति वृत्र वचः श्रुत्वा गता लिकम अपूजयत। वृत्रासुर की बात निष्कपट थी, शुद्ध भाव से बोले थे, कोई छल कपट नहीं था, कूटनीति नहीं थी कि युद्ध में देवराज इंद्र का मन इधर उधर करके हरा दिया जाए। उनकी निष्कपट बात सुन करके देवराज इंद्र ने बहुत प्रशंसा किया। गता लिकम पूजे, निष्कपट बात से उनका सम्मान किया और खुशी के साथ वज्र को उठा दिया नीचे से, वज्र ग्रहण करके। यही बात से आश्चर्यचकित है कि इस तरह का रजोगुणी लड़ाई झगड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया, वो भी भगवान कृष्ण का भक्त। वासुदेव भगवती सत्वात्मनि दृढ़ामति, वासुदेव का अर्थ है वसुदेव जी का पुत्र। वासुदेव, वसुदेव पुत्र में श्री कृष्ण में आपकी भक्ति है। भगवान कैसे हैं, सत्वात्मनि विशुद्ध सत्व में स्थित है, विशुद्ध सत्व में जो स्थित है, ऐसे भगवान में आपकी दृढ़ मति लगी हुई है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस तरह ये दोनों वीर वृत्रासुर और स्वर्ग के राजा इंद्र, बहुत बड़े युद्धाम पति, ये दोनों युद्ध के पति हैं, बहुत बड़े सेनापति हैं, जो आपस में धर्म जिज्ञासा से बात कर रहे थे। तो बाएं हाथ से परी को उठा करके, काला लोहा से बना हुआ परी को उठा करके वृत्रासुर इंद्र पर प्रहार किए। घोर बहुत कठिन था परी, उठा करके प्रहार किए इंद्र को मारने के लिए। इंद्राय प्राणोद घोरम वाम हस्ते न मारस, बाएं हाथ से सतुव्रतस परिघम कर्म चक्र भूपम चिच्छेद जुपद देव वज्रास पर्व सतपर्व वज्र में 100 गांठ होती है। 100 गांठ वाले वज्र से इंद्रदेव ने वृतासु की बाई भुजा को भी काट दिया, वो बिना भुजा के हो गए। उनके दोनों कंधे से खून की धारा बहने लगी, दो नदी जैसे, जैसे पर्वत से नदी निकलती है, ऐसे वृत्रासुर के देह से दोनों बाह कट जाने से रक्त की धारा बहने लगी। बहुत बड़े पर्वत के समान उनका शरीर था। तो एक बार भगवान इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे, तो सुखदेव गोस्वामी को याद आ गया कि इसी तरह पर्वतों के पंख कटे थे, तब तो पर्वतों से खून की धारा बही थी। जो वृत्रासुर के शरीर से खून की धारा बह रही है, चलने की शक्ति है, अब हाथ है नहीं, क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने युद्ध में अपना कर्तव्य निभाया। वे चलते हुए इंद्र के निकट गए और अपने मुख को खोले, अधर को जमीन से लगाए, ऊपर के ओठ को बादलों से, बहुत चौड़ा मुंह खोल करके और बहुत लंबी जीभ सर्प के समान जीभ से पकड़ करके इंद्र को खा गए। हाथी पर बैठे हुए इंद्र को हाथी सहित निगल गए। अब तो देवता ऋषि सब हाय हाय करने लगे, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, इस विश्व का पालन करने वाले देवता ही मार दिए गए। सब जगह हाहाकार होने लगा। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्यूतम, जैसे महासर्प कोई बहुत बड़ा अजगर एक हाथी को निगल जाए, इस तरह से वृत्रासुर मुंह खोल करके इंद्र को खा गए। पर इंद्र के वृत्रासुर के पेट में जाकर भी इंद्र मरे नहीं। ओम हरिर विद ध्यान मम सर्व रक्षा निस्तांग पद्म पदगेन्द्र पृष्ठ नारायण कवच को वे पढ़ रहे थे, वृत्रासुर के पेट में भी। और जब वृत्रासुर निकल गए इंद्र को, तो उसके बाद उन्होंने सोचा, भगवान का ध्यान करके उनको समाधि आ गई। समाधि अवस्था में वे वृत्रासुर के पेट को फाड़ करके अपने वज्र से बाहर आए इंद्र। वृत्रासुर के जीवित रहते हुए वे इनको नहीं मार पाए। वृत्रासुर स्वयं भगवान के ध्यान में डूब गए। वृत्रासुर के पेट में भी इंद्र वज्र लिए थे। जब वृत्रासुर समाधि में हो गए, तब उन्होंने वृत्रासुर के पेट को फाड़ा वज्र से और बाहर निकल आए हाथी सहित। अब देवताओं को बहुत खुशी हुई, ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत प्रकार से इंद्र की प्रशंसा करने लगे। बलभीत विभो इंद्र देवता बल नामक असुर का वध किए थे पहले, तो वे बलभीद विभू पेट से निकल आए और वृत्रासुर के मस्तक को काटने लगे वज्र से। वज्र बहुत वेग से चला दिए, बहुत तेज गति से वो मस्तक को चारों तरफ से काट रहा था। काटते काटते दो आयन बीत गया। दो आयन मतलब छह महीने का एक आयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण। दो आयन इसका अर्थ है साल, एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष के बाद तब मस्तक गिरा वृत्रासुर के देह से अलग होकर। तब देवताओं की नगाड़े बजने लगे, सब बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बड़ी विपत्त खत्म हुई, बहुत बड़ा राक्षस मारा गया। सभी इंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे। और वृत्रासुर के देह से एक बहुत बड़ी ज्योति निकली। ज्योति जीव का स्वरूप है, वो नित्य प्रकाश में है। और सबके देखते देखते वो ज्योति आलोक चली गई। आलोक अर्थ है वैकुंठ। सब लोग देख रहे थे ज्योति कहाँ गई, तो वृत्रासुर के देह से निकल करके ऊपर उठते हुए भगवान के धाम में चली गई। सुखदेव जी कहते हैं वृत्रस्य देहात् निष्क्रांतम् आत्मज्योतिरिन्दम पश्यताम सर्वलोकानाम् आलोकम् संपद्यते। सब लोग देख रहे थे वो अद्भुत ज्योति निकली वृत्रासुर के देह से, सबके देखते देखते आलोकम समुपद्यते, आलोक अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली गई, परम धाम में, वैकुंठ में। इस तरह से वृत्रासुर का यह प्रसंग पूरा हुआ। बहुत दिव्य प्रसंग है, इसीलिए जीव गोस्वामी जी कहे हैं कि भागवत में वह विषय है जिसमें वृत्रासुर का वध कहा गया है। तो वृत्रासुर का वध एक बहुत प्रकृष्ट प्रसंग है। अब 13वां अध्याय प्रारंभ किया जाएगा दोपहर के बाद। जय श्री राधे, जय श्री।